कुछ साल बाद उसी झरने के पास जहां कुछ सालों पहले अन्वय और आन्या ने एक दूसरे को हर मायने में खुद को समर्पित कर दिया था, वहां दो बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। वो मस्त यहां से वहां भागते हुए खेल रहे थे। उनके साथ कई वैम्पायर भी थे जो उन दोनों नटखट बच्चों के साथ बच्चे बने हुए थे। जुली, जीवन, जैक वहीं एक तरफ खड़े दोनों बच्चों को देख रहे थे। अन्वय और आन्या के मिलन के कुछ दो साल बाद आन्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम उन्होंने अधीर और आम्या रखा था। दोनों ने आम इंसानों की तरह रहने का फैसला किया था और इस पर कायम भी थे। अब उनका अपना घर था जहां वो अपने बच्चों और अनामिका जी और शिखर जी के साथ रहते थे। अन्वय और शिखर जी दोनों ही अपने वैम्पायर समुदाय के लिए काम करते हुए एक आम सी जिंदगी बिता रहे थे और साथ में बहुत खुश थे। कुछ दिनों पर अपने महल आकर वहां भी कुछ पल ठहर जाते थे, क्योंकि यहां की व्यवस्था देखनी भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। दोनों बच्चे बहुत शैतान थे और दिन भर आन्या उनके पीछे लगी रहती थी। आम्या अपने पापा और दादू की लाडली थी, शरारत करती और उनकी गोद में जाकर छिप जाती, जिससे आन्या उसे डांट भी नहीं पाती थी और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती थी। वहीं अधीर अन्वय की तरह थोड़ा गंभीर रहता था, पर शैतानी में वो आम्या से भी आगे था। उसे तंग करने के लिए जाने कहां कहां से आइडिया निकाल लाता था। आन्या उस पर जान छिड़कती थी। फिर अनामिका जी को उसके अंदर अन्वय नजर आता था, इसलिए वो भी उसे खूब लाड करती। पर ऐसा नहीं था कि दोनों बच्चों को लेकर किसी के लिए प्यार में कोई भेदभाव या मिलावट हो। दोनों बच्चे उनके लाडले थे। आन्या अजय से मिलती थी, पर अजीत जी या कावेरी जी को उसने दोबारा अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी अपने घर नहीं गई थी, अनामिका जी ही उसका ध्यान रखती थी। फिर अन्वय उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। बीते सालों में उनके प्यार और दीवानगी में जरा भी कमी नहीं आई थी। आए दिन मौका पाते ही अन्वय उस पर अपने प्यार की बारिश कर ही देता था और आन्या भी उसे उसके लिए अपनी दीवानगी का एहसास दिलाती रहती थी। मदन जी से अन्वय का रिश्ता आज भी वैसा ही था। माधुरी जी ने आन्या की प्रेग्नेंसी के टाइम उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्हें आन्या से जलन होने लगी थी, पर वो नहीं जानती थी कि आन्या एक वैम्पायर है। उनकी हर कोशिश नाकामयाब हुई और आन्या ने एक नहीं दो प्यारे से बच्चों को जन्म दिया और जन्म के बाद ही एक को उन्हें देने का फैसला कर लिया, जिस पर माधुरी जी की आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी खुल गई। उन्होंने उसके बच्चे को ये कहकर लौटा दिया कि प्यार करने के लिए बच्चे को उसकी सगी माँ से दूर करने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी माँ बनकर भी उन पर अपना प्यार, अपनी ममता लुटा सकती है। इसके बाद उन बच्चों को एक नहीं दो माँ और दो बाप का प्यार मिलने लगा। दोनों दो साल के थे तब माधुरी जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ भले ही दो जगहों पर रहते हों, पर आए दिन दोनों परिवार मिलते रहते थे। अपने बच्चे के होने के बाद भी मदन जी और माधुरी जी का प्यार अधीर और आम्या के लिए जरा भी कम नहीं हुआ था। आखिर उनके लिए वो उनके पहले बच्चों की तरह थे। सबकी जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई थी। दोनों बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। जैसे अन्वय और आन्या के लिए ये जगह बेहद खास थी, वैसे ही उनके बच्चों को भी ये जगह बहुत पसंद थी। वो मस्ती में खेलने में लगे थे कि तभी आन्या उनका नाम पुकारते हुए वहां आई। दोनों बच्चे दो तरफ झाड़ियों के पीछे छुपे थे। आन्या की आवाज़ सुनकर उनके लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई और उन्होंने जैसे ही एक दूसरे को देखा उनकी आंखें नीली होकर चमक उठीं। अगले ही पल वो दहाड़ते हुए एकदम से आन्या के सामने जा खड़े हुए। अचानक उनकी नीली आंखें, मुंह से बाहर आते दांत, बड़े बड़े नाखून और उनके चिल्लाने से आन्या घबराकर दो कदम पीछे हट गई। उसकी हथेली उसके सीने पर चली गई। वो सच में बहुत डर गई थी। धड़कनें इतनी तेज चल रही थी मानो दिल सीना चीर कर बाहर आ गिरेगा। चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया था। आन्या पीछे हटते हुए किसी के सीने से जा टकराई और अगले ही पल उसने पलटकर उस शख्स के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा, एक साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अन्वय उनकी शरारत समझकर मुस्कुराने लगा। वो अक्सर आन्या को ऐसे ही डरा देते थे। अन्वय ने आन्या को अपनी बाहों में थामा हुआ था। जैसे ही आन्या के कानों में दोनों के हंसने की आवाज़ आई, उसने सर उठाकर अन्वय को देखा, फिर बच्चों को देखा और झटके से उससे अलग हो गई। ये मम्मा टल गई, ये मम्मा फिलछे टल गई। दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए तालियां बजाने लगे थे और तोतली जुबान में बोल भी रहे थे। आन्या ने उनकी बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो गुस्से में उनके तरफ बढ़ते हुए गर्जी, बहुत हंसी आ रही है आप दोनों को, बहुत मस्ती सूझती है ना आपको मम्मा से, हमेशा मम्मा को डराते रहते हैं, रुकिए आज मम्मा आपको सबक सिखाती है। वो गुस्से में उनके तरफ बढ़ी और उसका गुस्सा देखकर दोनों बच्चे भागकर जाकर अन्वय के पीछे छुप गए। आन्या गुस्से में पलटी और तीनों को घूरते हुए गुस्से में उनके पास आने लगी।
अन्वय ने दोनों बच्चों को देखा जो उसके पैरों से लिपटे हुए थे। फिर आन्या को शांत करते हुए बोला, आन्या इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बच्चे हैं, बस मस्ती कर रहे थे तुम्हारे साथ। ऐसे करते हैं मस्ती? आन्या उसे गुस्से से घूरने लगी, फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दिल देखो मेरा कितनी तेज धड़क रहा था। ऐसे अचानक किसी के भी सामने जाएंगे तो यही हाल होगा उसका। दिल निकलकर मुंह को आ गया था मेरा, अभी बस मरने ही वाली थी। तुम इतना डरती ही क्यों हो? वो तो तुम्हारे साथ मस्ती करते हैं। अन्वय ने सफाई देनी चाही पर आन्या ने गुस्से में कहा, सब तुम्हारी गलती है, दोनों शैतान तुम पर गए हैं। पहले तुम भी मुझे ऐसे ही डरा देते थे और अब तुम्हारी कमी तुम्हारे बच्चे पूरा कर देते हैं। देखना, उनकी हरकतों की वजह से किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और चली जाऊंगी मैं तुम्हें और इनको छोड़कर। तब डराना तीनों बाप बच्चे मिलकर किसे डराओगे, फिर करते रहना खूब मस्ती। आन्या गुस्से में थी पर उसको बहुत बुरा भी लग रहा था। उसने रोने जैसी शक्ल बनाई तो अन्वय ने उसे रिलैक्स करवाते हुए कहा, ऐसे तो मत कहो, चलो अच्छा शांत हो जाओ, अब से वो ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे। कोई फायदा नहीं, इतने सालों में कभी तुम सुधरे हो जो तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से भी, अपने बच्चों को अपने पास रखो, मैं नहीं रुकूंगी अब यहाँ। आन्या ने तीनों को घूरा और गुस्से से वहां से जाने लगी। अन्वय ने दोनों शैतानों को आंखों से ही कुछ कहा, जिसे समझते ही दोनों जाकर आन्या के पैरों से लिपट गए और फिर सर उठाकर मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखते हुए एक साथ ही बोले, सॉरी मम्मा, अब से हम बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे, बस आप हमें छोड़कर मत जाओ। आन्या के कानों में दो नहीं तीन आवाजें पड़ी तो उसकी हैरानी भरी निगाहें अन्वय की तरफ उठ गईं, क्योंकि तीसरी आवाज उसी की थी। अन्वय ने अब उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से कहा, माफ भी कर दो, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम बाप बच्चों को कौन संभालेगा? तुम्हारे बिना तो हमारा एक पल भी नहीं कटता। अगर उनकी शरारत के वजह से नाराज हो तो मैं वादा करता हूँ आगे से वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डराएंगे, है ना बच्चों? अब से आप मम्मा को डराएंगे नहीं ना? उसने दोनों बच्चों को देखकर पूछा तो उन्होंने सर घुमाकर उसे देखा, फिर आन्या को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। इतने प्यारे लग रहे थे वो और तीनों ने मिलकर उसे इतने प्यार से मनाया, जिससे ये जानते हुए कि तीनों कभी उसे परेशान करना नहीं छोड़ सकते, आन्या पिघल गई और उसने नीचे बैठकर दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसके माफ करते ही बच्चे वापस खेलने लग गए। अन्वय आन्या के पास आते हुए बोला, सिर्फ बच्चों को माफी मिलेगी, उनके पापा को नहीं?
तुमसे मैं नाराज हो ही नहीं सकती, आन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसके सीने से जा लगी। अन्वय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो वहीं बैठ गए। आन्या ने अन्वय के कंधे पर अपना सर टिका दिया और अन्वय ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की निगाहें सामने थीं, जहां उनके बच्चे खेल रहे थे। कुछ पल उन्हें देखने के बाद आन्या ने एकाएक अन्वय की तरफ सर घुमाया और हौले से उसके लबों को चूम लिया। अन्वय ने चौंक कर उसे देखा। हर बीतते पल के साथ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और गहरी होती जा रही है। कभी कभी सोचती हूँ, जो उस रात तुम ना मिले होते तो क्या होता मेरा? मुझे इतना चाहने वाला जीवन साथी ना मिलता, इतने प्यारे प्यारे बच्चे ना मिलते। तुम कहते थे ना, पागल हूँ मैं। सही कहते हो, पागल हूँ मैं तेरे प्यार में। मेरी ये दीवानगी तुम ही से है और मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी ही दीवानी रहूंगी। आन्या लबों पर मोहिनी मुस्कान सजाए उसे बड़े प्यारे से देख रही थी। उसकी बात सुनकर अन्वय ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस रात नहीं मिलते तो कहीं और किसी और बहाने से टकराते एक दूसरे से, क्योंकि हमारा मिलन तो कुदरत ने लिखा हुआ था। तभी तो आज हम साथ हैं, हमारा छोटा सा परिवार है और हम खुश हैं। जैसे तुम्हारा प्यार हर पल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए और गहरी होती जा रही है। अब तो आलम यूं है कि तुम्हारे बिना एक पल भी कहीं सुकून नहीं मिलता। ये दीवानगी तुम्हारे लिए है, तुमसे है और तुमसे ही रहेगी। ये कहते हुए उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। दोनों बच्चे भागकर आकर उनकी गोद में बैठ गए। कुछ दूरी पर खड़े अनामिका और शिखर जी चारों को नम आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पिछले जन्म में उनकी प्रेम कहानी अधूरी छूटते देखा था और इस जन्म में उनकी प्रेम कहानी का एक हिस्सा वो भी रहे थे। उनका प्रेम पूरा हुआ, भले ही बहुत ही मुश्किलें आईं, पर वो आज साथ हैं, खुश हैं। यही देखकर उनकी आंखों में नमी तो लबों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। समाप्त। कैसी लगी आपको ये स्टोरी और इसका एंड, कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक और मुझे फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।